ओम शांति। क्यों राजधानी से शुरू किया जा रहा है? पहले तो था मधुबन से भी शुरू करेंगे, क्योंकि आखिर आपकी राजधानी कहाँ बननी है? आपको कहाँ आना है? लक्ष्मी नारायण कहाँ होंगे? राधे कृष्ण कहाँ होंगे? हम तो खाली तैयारी करवा रहे हैं। आप सबका सबको निमंत्रण है। जैसे आज कार्यक्रम देखा ना, एक की तैयारी हुई तो सबको निमंत्रण हो गया, ऐसे सबको निमंत्रण होगा। अच्छा, बाबा ने कुछ दिन पहले एक बड़ी रोचक मुरली चलाई थी, तो उसके आधार पर हम आपसे पूछ रहे हैं, दुनिया वालों के कितने बाप हैं और हमारे कितने बाप हैं? ये तो आसान काम है। हमारे तीन बाप हैं, दुनिया वालों के दो। अच्छा, तो दुनिया वालों के बाप के घर कितने और हमारे बाप के घर कितने होने चाहिए? हाँ, बाप होगा तो उसका घर भी होगा ना, कितने होने चाहिए? तीन होने चाहिए ना, तीन बाप तीन घर, दो बाप दो घर। अच्छा, इससे क्या अर्थ निकलता है? तो बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन जो है, तीसरा घर जो है, उस सूक्ष्म वतन में जाने के अधिकारी, उसका अनुभव करने के अधिकारी केवल मात्र सारी दुनिया की आत्माओं में कौन है? ब्राह्मण है। क्यों? कि वो कौन से बाप का घर है? जो हमारे तीन बाप हैं, उनके नाम बताओ, कौन कौन से बाप हैं? हैं, बोलो। अलौकिक, और दूसरा? दूसरा एक लौकिक, वो सबका है, एक अलौकिक वो हमारा है, और एक पारलौकिक वो भी सबका है। क्योंकि हमारा तीसरा बाप भी है, इसलिए उसका तीसरा घर भी है। उसमें जाने के अधिकारी कौन है? बाबा के बच्चे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सतयुग में आपके कितने बाप हैं? एक, बस एक, दो, तीन, इस तरह से है। अच्छा, द्वापर में कितने? दो। सतयुग में दुनिया वालों के कितने बाप हैं? देखा, पकड़े गए। हाँ, वो है ही नहीं वहाँ। हाँ, अच्छा, सतयुग में दुनिया वालों तो होते ही नहीं वहाँ। हाँ, लेकिन कह सकते हैं, क्योंकि परम धाम में तो रहते हैं ना, तो वहाँ तो एक बाप उनका है। अच्छा, नहीं है तो सही ना। अच्छा, परलौकिक बाप तो उनका है ना, वो परलोक में बैठे हैं, परलौकिक बाप है, हमारे लिए सतयुग है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न ये पैदा होता है कि सूक्ष्म वतन कब से चालू होता है? सोच कर बताना, सूक्ष्म वतन संगम क्यों संगम युग से चालू होता है? क्योंकि तीसरा बाप भी कब बनता है आपका? संगम पर बनता है, ठीक है? बाप होगा तो उसका घर होगा, तो तीसरा पिता हमारा संगम पर बनता है। अगर ऐसा है तो फिर द्वापर से साक्षात्कार कौन कराता है और कहाँ से कराता है? फिर ये सवाल पैदा हो जाता है। द्वापर से साक्षात्कार कराते हैं ना, किसी को हनुमान का, किसी को गणेश का, किसी को आपका, किसी को मेरा करवाते तो हैं। अच्छा, तो आप बताओ कि वो कहाँ से करवाता और कौन करवाता है? सिर्फ शिव बाबा की प्रेरणा से धर्मात्मा करवाते हैं, धर्मात्मा करते हैं, भगत करते हैं। ऐसा नहीं समझना कि शिव बाबा नीचे आकर सूक्ष्म वतन में वहां से साक्षात्कार कराते हैं, वो है ही अलौकिक पिता का वतन। अब एक प्रश्न और पैदा होता है कि क्या सारी दुनिया की आत्माएं, उनको कोई चांस नहीं है सूक्ष्म वतन में जाने का? जब बाबा कहता है कि तुम्हारा ही वो घर है, आप ही उसमें जा सकते हो, आ सकते हो, तो दुनिया के आत्माओं को कोई चांस नहीं है? ये तो भी अन्याय हो जाएगा। ठहरो 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 ठहरो, है? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो जाते तो है ना, तो वो हमारे बाप के घर में कैसे चले जाते हैं? जब बाबा ने कहा कि वो बाप का घर तो तुम्हारे लिए है, तो उसमें कैसे चले जाते हैं फिर? वो सजा खाने आ जाएंगे। वो अच्छा, भोग आप खा लो, सजा वो खा ले। बहुत अच्छा, तो क्या ब्राह्मण सजा नहीं खाएंगे? खाएंगे ना, थोड़ी बहुत तो खाएंगे ना। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि ऐसा कैसे कि बाप के घर में दुनिया वाले आ जाएं? तो उस समय वही बाप बाप नहीं रहता, क्या बन जाता है? धर्मराज बन जाता है। इस वास्ते बाबा कहता है कि वो बाप के घर में नहीं जा सकते, लेकिन धर्मराज पुरी में जा सकते हैं। इस वास्ते उनको भी चांस है, आखिरकार वहां देखे तो सही क्या होता है, डंडे तो पड़े उसको। अच्छा, फिर एक प्रश्न और है कि अगर आप जब ऊपर से आत्माएं आती हैं तो रास्ते में सूक्ष्म वतन आता है या नहीं आता? नहीं आता, तो कहाँ होता वो? हाँ, आते समय किसी के लिए भी नहीं होता, क्योंकि अगर आते समय हो फिर तो बाबा जो कह रहा है कि अलौकिक बाप के घर में कोई और तुम्हारे सिवाय नहीं जा सकता, फिर तो वो भी जाए, देखेंगे तो सही ना, रास्ते में से क्रॉस करेंगे। अब इससे ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या सूक्ष्म वतन सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है या उसके किसी कोने में है? क्योंकि अगर सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ हो तब तो आती बारी उनको क्रॉस तो करना पड़ेगा ना, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना तो पड़ेगा। अच्छा, लेकिन वहां पर वो क्रॉस ही नहीं करते, क्यों? क्रिएटेड है। अच्छा, कब क्रिएट होता? क्यों संगम पर? क्योंकि अलौकिक बाप ही संगम पर होता है, इस वास्ते अलौकिक बाप का ही तो वो घर है, तो आप भी वहां कैसे जा सकते हैं? फरिश्ता बन के जाएंगे या यहां बैठे हुए भी जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? तो बाबा कहता है कि सूक्ष्म वतन में का अनुभव भी और ऊपर वाले परम धाम का अनुभव भी आपको यहां ही संगम पर ही करना है। अगर आप परम धाम पहुंच गए तो वहां परम धाम का अनुभव नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, सूक्ष्म वतन का रंग क्या है? सुनहरी। अच्छा, और परम धाम का? ला, दोनों में फर्क है। जब वो कहते हैं कि हमने परमात्मा को देखा, परमात्मा बहुत फैला हुआ था और इसीलिए वो ब्रह्म था, उसका नाम ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म, सर्व कल्पितम ब्रह्म क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बाप के घर को ही बाप समझ लेते हैं, क्योंकि परम धाम का रंग कौन सा है और शिव बाबा का रंग कौन सा है? लाल। तो बहुत परम धाम तो बहुत फैला हुआ है। अच्छा, उनको परम धाम में क्या दिखता है? फैला हुआ लाल लाइट दिखता है। जब योग में बैठते हैं तो कहते हैं भगवान सब जगह है, अर्थात सब जगह फैला फैला देखते हैं, और शिव बाबा उनको दिखता ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि परम धाम का अनुभव भी आप यहां बैठे बीज रूप अवस्था में रहकर कर सकते हो, सूक्ष्म वतन का अनुभव भी आप यहां बैठे योग में रहकर अपनी सूक्ष्म स्थिति के द्वारा कर सकते हो। सूक्ष्म रूप कैसा होता है हमारा? आप सपने में चलते फिरते हैं ना, कम से कम सपने में तो कोई हवाई जहाज से भी गिर जाते हैं, डर भी लगता है ना, होता है ना। आप सपने में कैसे देखते हो? आपका रूप है ना। मान लो किसी के लौकिक पिता ने शरीर छोड़ दिया, अगर अभी तक नहीं छोड़ा तो उसके दादा ने तो छोड़ ही दिया होगा। अच्छा, अगर उस दादा को भी याद करते हैं, चाहे उसको शमशान घाट में छोड़ के आ गए थे, तो किस रूप में आता है वो सामने? सूक्ष्म रूप में, अर्थात जो रूप हड्डी मांस का बना हुआ नहीं है, जो आत्मा का स्वरूप भी नहीं है बल्कि आकारी स्वरूप है, उसको कहा जाता है सूक्ष्म। बाबा कहते हैं है तो बड़ा आसान, आपके लिए घर बनाया और वहां बिना टिकट बिना पासपोर्ट जा सकते हो, लेकिन वहां जाने के लिए पेट्रोल कौन सा चाहिए? हाँ, शुद्ध संकल्प का। एक तो शुद्ध संकल्प का चाहिए, बिल्कुल प्योर पेट्रोल चाहिए, वरना क्या होगा? कभी आपने देखा होगा दिवाली के दिन बच्चे लोग हवाइयां चलाते हैं, तो कई हवाइयां तो ठीक सीधी जाती हैं, कई को चलाओ तो वो इधर को चली जाती, कई बार तो लोगों के ऊपर भी गिरने लगती हैं, और कई वहीं खड़ी खड़ी बोतल में ही फुस फुस करके खड़ी रह जाती, ऐसा होता है ना। कई ऐसे घूमने वाले भी होते हैं, तो कई तो घूमते घूमते ऊपर चढ़ जाते हैं, कई टेढ़े होके जाते हैं, कई वहीं घूम घूम के पूरे हो जाते हैं। इसी प्रकार से अब आप बैठ गए योग लगाने, आपने कहा भी आज तो सूक्ष्म वतन की सैर करनी है, बाबा ने कहा आपका घर है, बाप का घर है, तो आओ। अच्छा, आप बैठ गए, आपने शुद्ध संकल्प भी किया। पहली बात, आपका शुद्ध संकल्प कब होगा? एक तो शुद्ध होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ, उसका असली पेट्रोल प्रेम है, और अशुद्ध होना ही चाहिए। अशुद्ध प्रेम वाला फिर और तरफ चले जाएगा, मोटर कार की तरफ प्रेम होगा, मोटर कार में चले जाएगा, वर्ल्ड कप की तरफ होगा तो वर्ल्ड कप में चले जाएगा, है जहां भी होगा चले जाएगा। इस वास्ते जो बाबा ये कहते हैं कि बच्चे आपको एकदम, जैसे दादी प्रकाशमणि को कहो अभी बाबा के पास जाना है, उनको कितनी देर लगेगी, क्योंकि उनका लाइन क्लियर है। तो बाबा ने कहा एक होती वायरलेस की लाइन, आगे तो तारों वाली थी, अब वायरलेस है। आजकल ये पैरे वाले भी लेके फिरते हैं वायरलेस, है ना, ऐसे करके हेलो। अच्छा, ये जो वायरलेस है ये फिर भी स्थूल है, इसमें स्थूल जा सकती है आवाज, लेकिन हमारा कौन सा है, वॉइसलेस मैंने निर्विकारी। तो हमारे को सूक्ष्म वतन से अगर मैसेज आना भी है, या हमने सूक्ष्म वतन में मैसेज भेजना भी है, या बातचीत करनी है, रू रिहान करना है, तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि वॉइसलेस होना चाहिए। अब वॉइसलेस में तो बहुत कुछ आ जाता है। वॉइसलेस में क्या आ जाता है, मोटे मोटे विकार थोड़ी आते हैं, वो तो आते ही हैं। मोटे विकारों वाले तो इस धरती के आसपास ही घूमते रहेंगे, ऊपर जाने का सवाल ही नहीं। लेकिन वॉइसलेस के लिए एकदम क्लियर, जैसे कि बिना तार की, अभी अमेरिका वालों ने गन पिस्टल निकाला है, उस पिस्टल में आपको वो चलते फिरते व्यक्ति को ऐसे करके खड़ा कर सकते, पूरी सेना को खड़ा कर सकते हैं, एक व्यक्ति बिल्कुल हिल ही नहीं सकता। और उसमें है क्या कि उसमें भी उन्होंने हवा में ही रास्ता क्रिएट किया है, ऐसे लगेगा जैसे गोली गई है, जाता गोली नहीं जाती है, लेकिन उसमें से कुछ अणु जाते हैं। इसी प्रकार से पहले भी ऐसा था, लेकिन साथ लगा के करना पड़ता है, ये दूर से ही कर सकते हैं, ये फिर भी स्थूल है। तो बाबा कहते हैं कि आपका जो सूक्ष्म वतन जाने का, कितना टाइम लगेगा सूक्ष्म वतन जाने में, 1 सेकंड, और वहां रहेंगे कितनी देर, जितनी देर वॉइसलेस हिलेगा नहीं, ये तो फिर नीचे आ जाएंगे, है ना। अच्छा, इस वास्ते ये जो शक्ति है कि वॉइसलेस संकल्प बने, इसका क्या, इसका क्या कुछ करना पड़ेगा हमें, तो ये बड़ा सूक्ष्म है मामला, ये इतना आसान मामला नहीं है, क्योंकि इसको बाबा ने दूसरा नाम भी दिया है कि सूक्ष्म वतन का कारोबार शुद्ध संकल्प से चलता है। एक इसको दूसरा नाम भी दिया, उससे और भी आसान हो जाता है, वो कौन सा नाम दिया है? आप लोग तो पुरानी सूक्ष्म पुरानी वाणियों का क्वेश्चन आंसर करते हो शायद, वो दिया मनोबल, कि सूक्ष्म वतन का कार्य शुद्ध संकल्प कहो या मनोबल कहो, तो मनोबल में सारी शक्तियां आ जाती हैं। मनोबल मीन्स सारी शक्तियां, सारे गुण, और गुण रहित नहीं। अगर एक भी कोई शक्ति या गुण कम हो गया तो क्या होगा, चलेंगे सूक्ष्म वतन के लिए, फिर क्या होगा, थोड़ी देर में देखेंगे हम तो अपने गांव पहुंच गए, ये क्या हुआ, वापस आओ भाई सूक्ष्म वतन जाना, थोड़ी देर में देखेंगे हम कहेंगे हमें तो समोसा मिला ही नहीं, फिर नीचे आ जाएंगे, है ना, ये गड़बड़ होती रहेगी। थोड़ी देर में सोचेंगे ये क्लास कब पूरी होगी, मुझे तो नींद आ रही है। तो ये जो है ये क्या है, ये जो है ये इसीलिए होता है, एक तो हम इतना वैल्यू नहीं करते कि भाई कितना वैल्यूएबल हमारा बाबा ने तरीका बताया है, और उसमें हम ही जा सकते हैं, बाप के घर और तो कोई जा नहीं सकता। तो हम अगर अपने को स्थूल साधारण व्यक्ति मान लेंगे कि भाई मैं तो पैरे वाला हूँ, मैं तो पानी पिलाने वाला हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तब आपका काम नहीं बनेगा। तो ये जो बॉडी कॉन्शियस है, रावण जो है ये कौन सा हथियार चलाता है, ये आपको धोखा देने के लिए निराश करता है कि नहीं हो सकता तुम्हारे से, अरे सूक्ष्म वतन तो दादी जी जाएंगी, तुम क्या जाओगे, तुम यहीं चले जाओ, 30 पार्क तो काफी है, है ना, अभी किसी को बोलो 30 पार्क जाना है तो फटाफट तैयार हो जाएंगे, अभी नाटक देखना वहां होना, कल्चरल प्रोग्राम, तो खाना भी नहीं खाएंगे। अच्छा, अगर कह दो कि योग में बैठना है तो कहेंगे अभी थक गए, कितनी देर बैठना है भाई योग में, इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि विशेष होते हुए भी कोई व्यक्ति साधारण बन जाए तो यही कारण होगा। इसलिए बाबा कहता है कि ज्ञान का मतलब है ज्ञान तो बड़ा आसान है, कुमारियों को थोड़ी ट्रेनिंग दे दो, आपको डंडा लेकर सारा समझाना शुरू कर देंगे। लेकिन ज्ञान का अर्थ है ज्ञान के द्वारा उसको यूज करके अपने जीवन में से बहुत महीन महीन चेकिंग करके अपनी कमजोरियों को निकालना। अदरवाइज क्या होगा, हम कहेंगे हम तो सोच चिंतन कर रहे हैं। सोच चिंतन क्या कर रहे हैं, ड्रामा, आत्मा, परमात्मा, मुरली की पॉइंट याद कर लिए, रिपीट कर दिए, नहीं। अपनी सूक्ष्म कि हमारी लाइन इतनी बुद्धि की क्लियर हो, इतनी वॉइसलेस हो, क्योंकि अब टाइम तो खतरनाक आने वाला है। आप अगर नहीं क्लियर करेंगे तो क्या होगा, तो बाबा ने कहा हुआ कि माया भी ध्यान रखती है कि जिसका जो पॉइंट कमजोर है ना उसी की पेपर आएगा है, उस वक्त ख्याल आएगा मैं अपने घर होया हूँ, घर गएंगे वापस ही नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है कि उस लास्ट मोमेंट के लिए व्यक्ति को, बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि लास्ट मोमेंट कौन सी डेट को आना है, उस दिन तैयारी करूंगा मैं, या मम्मा ने सोचा कि लास्ट मोमेंट कौन सी डेट पर आना। जो डेट्स के हिसाब से लास्ट मोमेंट करते वो तो वैसे ही धोखे खाते और अलबेलेपन में रहते हैं, लेकिन मुझे अपना लास्ट मोमेंट हर वक्त मानना है, एवर रेडी रहना है, और उसके लिए सारे संगठन में रहते हुए, सारी चीजों में पास करते हुए अपनी पढ़ाई पर पक्का ध्यान रखना। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, बच्चे तो सारे ही हैं है ना, लेकिन गॉडली स्टूडेंट है वो स्टडी के ऊपर है। बाबा ने सबको एक ही जैसी मुरली सुना दी, अच्छा अब उसमें ध्यान दिया, आधी सुनी, गौर किया कि नहीं किया, उसके अंदर खोए कि नहीं खोए, अच्छा उसको यूज किया कि नहीं किया, अपने एक दिन से अगले दिन तक कुछ फर्क आना चाहिए हमारे में, कुछ शक्ति बढ़नी चाहिए, बाबा कहता आपके अंदर मेरा रूप दिखना चाहिए। इस वास्ते ये जो है, ये काम जो है करेंगे तब आपका योग का भी फायदा होगा, नहीं तो योग के टाइम में बैठेंगे, घड़ी बीतती जाएगी, फीलिंग नहीं आएगी मेरी कमाई हुई। जैसे सरकारी नौकर होता ना, देखता 5 कब बजे घर जाऊं, बस वो सोचेंगे कब टाइम पूरा हो मैं जाऊं। लेकिन वो जो बिजनेसमैन होता है वो थोड़ी देखता है 5 कब बजे मैं घर जाऊं, वो तो कमाई करता है। इस वास्ते हमें जो है इस ज्ञान, अपने यहाँ पर सेवा वगैरह मिली हुई है वो और बात है, उसका भी फल है, भगवान के घर में तो आने का भी फल है, लेकिन हमारा जो असली काम है उससे हमें अटेंशन नहीं हटाना चाहिए। कारोबार करो, बिजी रहो, ये हमारा टेस्ट है, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। हम खाली योगी नहीं कि जाके बैठ जाओ, नहीं, कर्म करते हुए योगी बनना है, उसके लिए योग का अभ्यास करना है। लेकिन उसकी सफलता जब मिलेगी यदि हम ये याद रखेंगे कि हमारा मनोबल मीन्स, तब बाबा ने कहा हुआ है एक है मास्टर सर्वशक्तिवान, एक है मास्टर शक्तिवान, उसमें शक्तियां हैं, चंद्रमा में भी कलाएं होती हैं। अब 16 में से 14 भी हो गई है तो सिर्फ 14 बड़ी चीज है, किसी को 14 अंक नहीं मिल जाए, 100 में से किसी को 95 नंबर मिल जाए, कहेगा मेरे तो बहुत नंबर आ गए हैं। एक था बनिया, तो बनिया का बेटा मैं हिसाब में पास हुआ, 100 में से उसको 96 नंबर मिल गए, तो घर आया तो माँ ने उसको हलवा खिलाना शुरू किया, बेटा बड़ा, 100 में से 96 नंबर मिल गए। अचानक वो बनिया आ गया, उसने कहा क्या है ये हलवा वगैरह क्यों बन रहा है, बनिए तो कंजूस होते हैं। उसने कहा अरे तुम्हें पता है ये 100 में से 98 नंबर लाया है। बनिए ने जोर से उसको एक लपड़ मारा, एक उधर मारा, 100 में से 98 लाया, अरे तूने तो मूल भी गवा दिया, हम तो 100 के 200 करते हैं शाम तक, तू 100 भी नहीं वापस लाया, है ना। इसी प्रकार से अगर हम ये सोचे 16 में से 14 तो मिली गई, तो 14 में होगा क्या, 14 में एक क्वार्टर तो आपका स्वर्ग भी गया, ठीक है ना। इसलिए बाबा कहता है इसमें आपका फायदा है कि जितना जल्दी जल्दी सर्व गुण, सर्व कलाओं को धारण करेंगे, सर्व शक्तियों को धारण करेंगे, तो उतना आपका सेवा का यानी दान करने की, दान करने के लिए जमा होगा, जिसको कहते हैं विश्व कल्याण। बाबा तो आजकल कह रहा मनसा सेवा करो, अब बैठ जाओ, तत्वों को शुद्ध करना है, और सोचे तो पहले मैं तो शुद्ध हो जाऊं, मेरा संकल्प तो शुद्ध हो जाए, तत्व तो बाद में होंगे, कैसे तत्व शुद्ध होंगे, उसके लिए तो एक्स्ट्रा चाहिए ना। अब जैसे सागर पहाड़ियों को डुबो देता है तो बहुत गहरा होता है, उसमें कई पहाड़ियां डूब जाती हैं, तो समस्याओं को भी डुबोने के लिए आप तो उससे ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। इस वास्ते सो कल्याण, बस मेरा ही कल्याण होता रहे, मुझे पॉइंट्स लिखता रहूं और मैं मुरली सुनता रहूं, दिल कहे बाबा मुरली सुनता रहूं बस, तो उसका फायदा क्या होगा, आप सीधा त्रेता में जाएंगे। इसलिए बाबा ने कह रखा सो कल्याणकारी त्रेता में, इसमें चाहिए क्वालिटी। अब त्रेता के राजा की कितनी प्रजा होती है, रामचंद्र जी की कितनी प्रजा है, और लक्ष्मी नारायण की कितनी प्रजा, और लक्ष्मी नारायण फर्स्ट की कितनी प्रजा, अब मम्मा की कितनी प्रजा है, ये जो आजकल रेजगारी पैदा हो रही है मम्मा की प्रजा है क्या, मम्मा की प्रजा की प्रजा की भी प्रजा है ये, क्योंकि तो कॉइन्स है, जैसे छोटे बच्चों का भरा रहता ना उसमें होते कॉइन, पैसे ही होते हैं ना, पैसे आने चार आने आठ आना। इस वास्ते बाबा कहता है, जिसको कहता है वारिस बनाओ, पहले तो खुद वारिस बनो, बड़े खुश हो जाते हैं बाबा के वारिस बनाओ, वाह अब वारिस हम होवे नहीं, दूसरे को कहते तू वारिस बन जा, वो क्या कहेगा चैरिटी बिगिन दैट होम, तुम तो बनो। इस वास्ते और वारिस बनने का भी क्या अर्थ है, कि बहुत धन इकट्ठा करके ले आए तो वारिस बन जाए, ऐसा भी नहीं है। मम्मा क्या धन लाई थी, कुछ भी नहीं लाई थी। तो इसलिए बाबा कहता कि इस ज्ञान में क्वालिटी का मूल्य है, तो क्वालिटी में गुण होते हैं, तो गुणों को ग्रहण करना। हीरे भी बाबा ने मुरली में कहा है, कई प्रकार के हीरे होते हैं तो सारे हीरे, लेकिन उसकी वैल्यू में फर्क होता है। इसी प्रकार से फूलों की भी वैल्यू में, कोई मोंगरे का फूल बाबा कहता है, अक का तो छोड़ो, कोई रूहे गुलाब कहता है। तो हमको क्या बनना है, हमें तो अपना संगठन का फायदा ले सकते हैं आप, लेकिन संगठन में खो जाए कि चल भाई मैं भी जा रहा हूँ तू भी चल साथ ही, तो वो दोस्ती किसी काम की नहीं है, वो दोस्ती भगवान से परे करने वाली है। तो किसी का बाबा कहते हैं एक दूसरे को सावधान करके उन्नति को पाना। इस वास्ते हम आपको ये कह रहे हैं कि बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन की सैर करो, बड़ा अच्छा है, अब करी या अंत में बाबा कहते सबको सूक्ष्म वतन ले जाऊंगा एक बार तो दिखाऊंगा, उस वक्त जाना है, वो तो फिर दूसरा हो जाएगा तरीका, है ना। इस वास्ते बाबा ने कहा आप बच्चों को मैंने सारी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बनाया है, हमारे नाम लेकर लोग, जैसे किसी बड़े सेठ का नाम लेकर लोग काम दुनिया में करे आते हैं ना, मैं फलाने का आदमी हूँ, हमारा नाम लेकर कितने लोगों का रोजगार चल रहा है, काम हमारे वाला नहीं है, नाम हो गया ब्राह्मण है जी, तो क्या कर रहे हैं वो, जन्म से लेकर मरने तक लोगों की हर काम में वो ब्राह्मण चाहिए, है ना, पंडित जी नहीं आए। अब वो जो ब्राह्मण है उनको कितना कुछ मिलता है, सब उनका जीवन निर्वाह चलता है, तो किसके आधार से, वो हमारा काम नहीं करते, हम दान देने वाले वो दान लेने वाले, उल्टा हिसाब है, लेकिन उनका नाम है इस वास्ते वो कमा रहे हैं, ठीक है। तो बाबा कहता है किसी व्यक्ति का परिचय लेना तो उससे नाम से मिलता है, तो आपका नाम ऊंचा है या नहीं, ब्राह्मणों का ऊंचा नाम है, बाप के बच्चे हैं ऊंचा है, अच्छा फिर हमारा रूप, रूप की भी बड़ी वैल्यू होती है दुनिया में, अखबार में आता है आईएएस ऑफिसर के लिए सुंदर कन्या चाहिए, आईएएस ऑफिसर चाहे काला भूत हो, क्योंकि उसकी क्वालिटी है, उसकी पोस्ट है, उसकी पर्सनैलिटी है, तो पोस्ट की भी वैल्यू होती है, पर्सनैलिटी की भी होती है, सतयुग में तो दोनों ही होती है, लेकिन यहाँ पोस्ट की भी वैल्यू है, तो जो पर्सनैलिटी हमारा रूप है, कौन सा रूप है हमारा, वाह ज्योति बिंदु रूप है, वो किसी को क्या पता लगेगा, है देवी देवता जो आप मंदिर में देखते हैं ना, तो आपके रूप से भी लोगों की कमाई हो रही है, देवी देवताओं की मूर्ति को देखकर भी लोग पैसा चढ़ाए जाते हैं, हमने हरिद्वार में फेर किया वहाँ ये मूर्तियां बना दी, तो लोग पैसे रख जाते थे, नोट भी रख जाते थे, हम दादी को दिखाने ले जाते थे, ले भी जाते थे, जब तक वो आवे दादी वो ले भी जाते थे लोग, तो फिर भी रखते तो है, तो क्यों रखते हैं, तो आपके इस रूप का जो है आज तक सेवा हो रही है, किसी को शांति चाहिए, किसी को संतोष चाहिए, कुछ अपना सच बोलना है जाके, तो किसके आगे रोना रोते हैं, देवी देवताओं हमारे रूप के आगे। अच्छा और दूसरा क्या होता है, नाम रूप के बाद और क्या होता है, गुण, गुण देखे जाते ना। अच्छा अब गुण कौन से हैं हमारे, गुण और शक्तियां, तो आप देखेंगे कि वो हमारे गुणों की माला फेर कर कीर्तन करते हैं, तो क्या करते हैं वो कीर्तन में गुण गान करते हैं, और गाते गाते खुद ही खुश हो जाते हैं, महिमा करते हैं देवताओं की और खुश खुद हो जाते हैं, कीर्तन के बाद कितने खुश होते हैं, थकते भी नहीं फटाफट फटाफट, एंड में तो जाके कितने जोर से करते हैं, खुश हो जाते हैं भगत लोग, कीर्तन के वक्त जरूर जाएंगे, इस वास्ते आपकी कीर्ति गाकर खुद खुश होते हैं, आपको भोग लगाकर खुद खुश होते हैं। तो ये हमारे गुण है। अच्छा, शक्तियां किसी को कह दो, कोई कमजोर व्यक्ति है उसको कह दो भाई पांडव, अरे पांडव, तो बड़ा लंबा चौड़ा भीम उनको दिखाई देने लग जाता है, पांडव हाँ भाई, या शक्तियां। इसलिए बाबा कहता है कि आपके गुण और शक्तियों के नाम पर भी लोगों में उत्साह आ जाता है कि नहीं आ जाता है? अच्छा, फिर और क्या होता है? और दुनिया में किस चीज की महिमा है? कर्तव्य। हमारा कर्तव्य वो करते तो नहीं, लोगों को कहते हम तुमको मुक्ति दिला देंगे, चलो तुमको जीवन मुक्ति दिला देंगे, आयुषवान भव, धनवान वन, पुत्रवान भव। तो ये भी हमारे कर्तव्य, श्रेष्ठ कर्तव्य, विश्व कल्याण के आधार पर वो सो कल्याण करते रहते हैं। तो और क्या होता है? और होती जगह, स्थान। पहले पूछते इसकी कोठी वोठी है कि नहीं, कोई व्यक्ति पैसे वाला है कुछ, तो स्थान हमारा जो है कौन सा स्थान है हमारा है? तो बाबा कहता है कि आपके श्रेष्ठ स्थान को तो वो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उन्होंने उसके आधार पर तीर्थ स्थान बना लिए, जगह जगह सारे वर्ल्ड में, सारे भारत में तीर्थ स्थान बना लिए, जहां जाकर के वो स्थान की महिमा, गंगा सब जगह बह रही है लेकिन तीर्थ स्थान पे जाके और वहां पर जाके वो कहेंगे हम पुण्य हो गया हमारा। तो स्थान भी हमारे नाम से बाबा ने इतना श्रेष्ठ स्थान हमारा बनाया है, मधुबन बनाया है। सतयुग भी श्रेष्ठ, मधुबन भी श्रेष्ठ, परम धाम भी श्रेष्ठ, सूक्ष्म श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। हमारी तो मौज हो गई। फिर और क्या होता है? तीर्थ पर जाते भी हैं फिर भी कहते हैं उस समय उस घड़ी स्नान करोगे तो ज्यादा लाभ होगा। चाहे सुबह 4 बजे ठर 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 करते जाके डुबकी लगा के फटाफट निकलते, लेकिन है तो सही। तो वो समय, उसको कहा जाता है समय। दुनिया में मुहूर्त निकलवाते हैं हर काम के लिए, तो समय का भी महत्व है। तो हमारा कौन सा समय है? ये जो इस समय का श्रेष्ठ समय है, जिसको कितने नाम दिए हुए हैं, इसको अमृत वेला, इसको ब्रह्म मुहूर्त है, प्रभात, और इसको स्लीप युग, कल्याणकारी युग, पुरुषोत्तम युग, कई नाम दिए हुए। तो ऐसी सारी महिमा के पात्र बाबा के बच्चे बनने के बाद, जिसको बाबा ने कहा ये लो कलम, जितनी चाहिए किस्मत लिख लो अपनी, और फिर हम बन जाए साधारण। मुरली भी सुने हाईएस्ट, क्या हमारा सतगुरु क्या सुनाता है? ऊंचे से ऊंचा वो कोई भी नहीं सुनाता। कितनी अच्छी अच्छी मुरलियां सुना रहा है। किसी दिन कहता है ऐसा बाप है जिसका कोई बाप ही नहीं है, किसी दिन कहता है ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं, किसी दिन कहता है वो स्वर्ग में आता नहीं लेकिन उसको सब पता है। कितनी वंडरफुल मुरलियां, अगर आप गौर गौर से सुनो आपको कितना मजा है कि कोई किसी को उसमें जाता नहीं। हमें भी इससे ज्ञान मिलता है कि आग में हाथ डाल के कोई कहे हाथ जलता है उसका क्या फायदा, ये जाने के हाथ डाले बिना ही कि इससे हाथ जलता है तभी तो फायदा है। तो बाबा कहते ना मैं सतयुग में आऊं ना कलयुग में आऊं, फिर भी तुमको दोनों का ज्ञान सुना के दोनों से तुमको लाभ दूं, कलयुग से बचाऊं सतयुग में ले जाऊं, ऐसा वंडरफुल कोई होता है? ऐसा हमारा फादर, ऐसा हमारा टीचर, ऐसा हमारा पकड़ पकड़ कर भी ले जाने वाला सतगुरु। अब हम आगे छूटने वाला नहीं, छोड़ने वाला नहीं है वो हमें। आप छूटना भी चाहोगे तो पकड़ पकड़ के दो डंडे लगा के भी ले जरूर जाएगा, उसका ये वायदा है, लेकिन डंडे खा के क्यों जाए? इसलिए बाबा कहता है कि ये पढ़ाई इंटरेस्टिंग है, बड़ी सहज है, बड़ी रोचक है, लेकिन इसमें एक ही चीज चाहिए अटेंशन, कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। और गॉडली स्टूडेंट का मतलब क्या है? जनरल स्टूडेंट नहीं है गॉडली स्टूडेंट। एक स्टूडेंट बीए में पढ़ रहा है, मैं बीए स्टूडेंट हूं, उसका टेस्ट क्या होता है? आज उसने जो पढ़ा आज उसको उसने पढ़ के हजम करके धारण किया, कल की पढ़ाई के लिए उसका तैयार हुआ, या आज की पढ़ाई कल पढ़ेगा, कल की पढ़ेगा परसों, ऐसा तो नहीं ना इसको लग जाएंगे बरसों, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए बाबा कहता कि आज का तुरंत, मम्मा ने क्यों सबसे पहले पूरा कर लिया अपना पाठ? इसलिए कि मम्मा को जो शब्द बाबा कह देता था उसका वो रूप उसको धारण करके सोचकर मंथन करके अपना बना लेते, खत्म। हालांकि उस समय विदेशों में सेवा नहीं थी, बाबा कहता था विदेश में सेवा होगी, उस समय सन्यासी को इतने नहीं आते थे, बाबा कहता तुम सन्यासियों को समझाओ। लेकिन जो मम्मा को कह दिया, मम्मा ने उसका रूप बन के, मम्मा की आप कोई मुरली सुने, कोई अज्ञानी व्यक्ति भी सुनेगा ना, वो इतनी युक्ति युक्त तर्क युक्त होगी कि कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा ये क्यों कहा। हम लोग कहेंगे तो फिर भी कह देंगे ये समझाओ और समझाओ। उसने ऐसा नपा तुला उसका होता था। कारण क्या? मम्मा ने धारण किया। मम्मा तो कुमारी थी लेकिन उसका रूप भी बदल गया। यानी कोई व्यक्ति किसी चीज को ऐसा धारण करे उसका रूप भी देवी जैसा हो जाए, माँ जैसा हो जाए, उसकी लौकिक माँ भी उसकी गोद में जाए, समझे कि मम्मा है। तो क्या कैसे कर लिया कि उस ज्ञान को धारण किया। कोई ज्ञान साथ लेके चले, कोई कह दी ये ले जाओ 10,000 रुपया तुम्हारा है, शाम को फिर वापस ले आए जी मेरे पास रखा है 10,000, इसका क्या फायदा। इस वास्ते रोज का रोज, बल्कि बचाना ही नहीं, उसको पचा कर हजम करके मेरा बन गया। तब बाबा कहता कि मैं वर्षा दे रहा हूँ, मैं वर्षा लुटा रहा हूँ, मैं वर्षा पूरा देकर चले जाऊंगा। चले तो जाएगा ही, अब नयो के निमित्त हमें मिल रहा है, रिवाइज हो रहा है, तो हम वो वर्षा लेकर के खाली खुश हो रहे हैं, दूसरों को वर्षा मिल रहा है, हमारी संस्था बहुत अच्छी हो रही है, बहुत लोग आ रहे हैं। एक होता है दर्शक की खुशी कि कहीं दर्शक होते हैं ना, बहुत बहुत बड़ी रौनक लगी हुई है। एक होती है पाठधारी की खुशी, एक होता है बारात को देखकर खुश होना, बारात में शाम उसको भी थोड़े 2-4 लड्डू तो मिल जाते हैं बारात में जो पास पास खड़ा हो, एक है उसमें जाकर खुश होना। हमें ये देखना है कि हम वर्षा लेकर वारिस बन रहे हैं या वारिस और बन रहे हैं। हम वो फलाना लंदन में वारिस बन गया, वो अमेरिका में बन गया, वो वहां बन गया, और हम देखकर खुश हो रहे हैं, आओ जी बाबा के वारिस आओ। नहीं, ये भी अच्छा है लेकिन ये कोई पद तो नहीं है ना। इस वास्ते बाबा कहता जब टाइम दे ही दिया। एक व्यक्ति कल परसों भाषण कर रहा था, हर एक के पास 24 घंटे, वो कह रहा था हर एक के पास 24 घंटे, और किसी के पास कम ज्यादा होगा, 24 घंटे तो सबके पास है, बराबर है। उस 24 घंटे को हम कैसे यूज कर रहे हैं? अपनी तरक्की के लिए कर रहे हैं। तब बाबा ने कहा था कई बच्चे आते हैं जीवन बनाने, फिर थोड़े दिन के बाद ढीले हो जाते हैं तो लग जाते हैं जीवन बिताने। भाई चलो अच्छा गुजर रहा है, मुरली भी सुन लेते हैं, अपना कोई झंझट भी नहीं है, है? लेकिन जीवन बनाना का चांस मिले और कोई जीवन बिताने लग जाए तो क्या होगा? तो पढ़ाई के वक्त अगर कोई खेलना शुरू कर देगा, अटेंशन नहीं रखेगा, उसका नंबर क्या, उसका दिल ही नहीं बोलेगा। तब बाबा कहता है ऐसा टाइम नजदीक आएगा जब आपको प्राप्ति का भी नशा चढ़ेगा, और अगर प्राप्ति नहीं होगी तो पश्चाताप होता रहेगा, बार बार मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये कर लेता। जो करना का टाइम है वो भी निकल जाएगा, हाय मैंने ये नहीं किया, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा, संकल्प उसका नीचे। इसलिए बाबा ने कहा है संकल्प एकाग्र हो, पावरफुल हो, शुद्ध हो और शक्तियों संपन्न, जिसको मनोबल कहा जाता है, विल पावर। एक होती विश पावर, हाँ जी हो जाए, होना चाहिए होना चाहिए। एक है विल पावर, विल मैंने होगा निश्चित, तो विल पावर को मनोबल कहा जाता है। तो आपके हाथ में है ज्ञान योग धारणा करके मनोबल इकट्ठा कर लें। अगर बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो फिर क्या होगा, वो मनोबल डिस्चार्ज हो जाएगा। सेवा की अभिमान आ गया, ये किया अटैचमेंट हो गया किसी के साथ जुड़ बातचीत में, ये मेरा मित्र है, बाकी मेरे जैसे कम मित्र हैं। ड्यूटी की पूरी नहीं की, नाम मात्र की, जैसे माता है रोटी बनाती, एक तो भाई बाबा के बच्चों के लिए प्यार से बना रहे हैं, एक चलो है फूले ना फूले कोई तो खाएगा ही, है अस्पताल तो है ही। इस वास्ते ये जो करेंगे उसको कम मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है कि ये नहीं क्या काम कर रहे हो, उसको कैसे कर रहे हो, अपना स्नेह युक्त बाबा का समझ के। बाबा ने कहा है गॉडली सर्वेंट भी हैं आप, मैसेंजर भी हैं, तो गॉडली सर्वेंट के समय सर्वेंट बन के, ना उसमें लोभ आए, अनासक्त होकर सिर्फ सेवा भाव से करेंगे, उसका फल और है। किसी को सुना दिया जाके मैंने ये किया, आधा गया ऐसे है, किसी को किया उसका नशा ही चढ़ गया, तो मेरे बगैर इनका काम ही नहीं चलता, मैं रूठ के बैठ जाता हूँ फिर कट जाता। इसलिए बाबा कहता मनोबल को बढ़ाना, उसको कायम रखना भी आपके हाथ में है, मिलते हुए भी आपकी जेब में छेद है और खिसकता जाए तो वो भी आपके हाथ में। ओम शांति।